مكملش حاجة.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم ارفعوا لا يرفعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارزقنا علما تو آج رمضان المبارک کے بعد یہ پہلی درس قرآن والی کلاس ہے تو اس میں ہم نے انشاءاللہ سورۃ المرسلات پڑھنی ہے رمضان المبارک کے درمیان کے دوران ہی جو سورت چل رہی تھی وہ سورۃ الحج تھی اس کلاس میں جو ہم کافی دنوں پہلے سے پڑھ رہے تھے اور پھر رمضان المبارک میں ہم نے اس کو کنٹینیو کیا تھا اور اس میں ہی وہ مکمل ہو گئی تھی پھر ہم نے سورۃ النمل شروع کر لی تھی پڑھنی بلکہ سورۃ النمل پڑھنی جاری کر لی تھی کیونکہ وہ مردوں کی کلاس کے اندر پہلے سے چل رہی تھی اور وہ وہاں پر ابھی بھی جاری ہے تو وہ تو شام کو جو کلاس ہوا کرتی ہے اس میں سورۃ النمل ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ اور خواتین کی کلاس میں ایک نئی سورت شروع کرنی تھی تو اس میں پھر نظر انتخاب جو ہے وہ سورۃ المرسلات پر پڑی اس کی وجہ یہ بنی کہ سورۃ المرسلات جو ہے وہ اس کی تفسیر جو ہے وہ پہلے ہم نے اس کلاس کے اندر نہیں پڑھائی ہوئی ہے جبکہ 30ویں پارے کی پوری پوری تفسیر مکمل ہو چکی آواز ہلکی ہے اچھا دیکھتے ہیں تھوڑی دیر میں بتائیے گا کہ اگر ابھی بھی آواز ہلکی ہے آج اس کی آواز نکلی شاید اس وقت ہلکی رہی ہے تو سورۃ المرسلات کی تفسیر اب تک ہم نے اس کلاس کے اندر نہیں پڑھی تھی جبکہ 30ویں پارے کی پوری تفسیر جو ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور اس کی ریکارڈنگز ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں اور جو 29ویں پارہ ہے اس کی بھی ہم ساری सूरतों की तफसीर पढ़ चुके हैं और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं, सिवाय सूरत मुरसलात की जो कि 29वें पारे की आखिरी सूरत है। तो इसको भी मुकम्मल कर लेते हैं तो 29वां पारा मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसकी तिलावत जो है वो आज पूरी कर ली है, क्योंकि मारुफुल कुरान में हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ही चंक में ही इस पूरी की पूरी सूरत को लिख दिया है, और इसके बाद फिर पूरी की पूरी सूरत का खुलासा तफसीर और बात को मसाइल लिखे हैं। तो अब हम इसका तर्जुमा पढ़ना शुरू करते हैं। मारुफुल कुरान की जिल्द नंबर 8 है, ये पेज नंबर 640 है, 640, और तर्जुमा मारुफुल कुरान में, जैसा कि आप में से अक्सर को पता है कि ये हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का किया हुआ तर्जुमा हज़रत मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर नकल फरमा दिया है। तो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमे में फिर लिखते हैं कि वल मुरसलात उर्फा, कसम है चलती हवाओं की दिल को खुश आती, यानी ऐसी चलती हवाएं, मुरसलात से मुराद हजरत ने लिया है चलती हुई हवाएं, ठीक है, जो कि दिल को खुश करती हैं। बाकी इसकी तफसीर इंशाल्लाह आगे आएगी तो वहीं पे पढ़ेंगे फिर। फल आसिफात असफन, आसिफात झोंका देने वालियों की जोर से, यानी जो जोर से झोंका देती हैं, ठीक है, यानी जो हवाएं चलती हैं तो उनसे क्या होता है कि चीजें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हिलती हैं, बाकायदा उनको झोंका मिलता है, ठीक है। बंदा जब जैसे नींद आ जाती है ना बैठे बैठे, तो एकदम से ना एक झटका सा लगता है, तो उसको कहते हैं कि जी झोंका आ गया था, नींद का झोंका आ गया था, क्योंकि बंदा हिल जाता है उसके अंदर। तो फल आसिफात असवन, झोंका देने वालियों की जोर से, असवन जो है वो, यानी चूंकि इसमें ताकीदन ये इसम यानी मफूल मुतलक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे ताकीद आ जाती है, असवन ये ताकीद के लिए है। तो झोंके में क्या ताकीद होगी या क्या एम्फेसिस होगा, जोर से झोंका आना, यानी एक बड़ा जबरदस्त झोंका आता है, ठीक है, तो उसको असवन को फिर उससे ताबीर कर दिया, जोर से झोंका आने वाला। तो ये जो हवाएं होती हैं ना, ये झोंका देने वाली होती हैं और जोर से झोंका देने वाली होती हैं। वन नाशिरात नशरन, नाशिरात, तो हजरत शेख उलन फरमाते हैं कि इसका तर्जुमा है फिर उभारने वालियों की उठाकर, ठीक है, यानी नशर करने वाली, उभारने वाली, जो कि यानी उठा करके उभारती है, यानी खूब अच्छे से उभारती है। उभारने का मतलब क्या है, किसी को उठाना, ठीक है, उभारना उठाना, ठीक है। तो अब इसमें क्या ताकीद होगी, तो इसको कहा के उठा कर उभारती है, यानी खूब अच्छे से उभारती है, यानी हवाएं, ये भी हवाओं का ही जिक्र हो रहा है। तो वाव जो है ना, ये है कसम के लिए, तो मैंने बताया ही नहीं आपको पहले, असल में तो ये बताना था कि वाव जो है वो कसम के लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, जैसे वल्लाही, अल्लाह की कसम, ठीक है, तो अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं हवा की, ठीक है, और हवा की मुख्तलिफ सूरतों की, या हवा की मुख्तलिफ जो है ना वो कैफियात की कसमें खा रहे हैं, मुरसलात जो दिल को खुश करने वाली हवाएं होती हैं उनकी कसम खाई सबसे पहले, फिर उसके बाद जो झोंका देने वाली हवाएं होती हैं जो चीजों को हिला देती हैं उनकी कसम खाई अल्लाह ताला ने, फिर वन नाशिरात जो उठाने वाली हवाएं होती हैं अल्लाह ताला ने उनकी कसम खाई। तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक की कसमें खाते हैं कुरान मजीद के अंदर। मखलूक की कसम खाना हमारे लिए जायज नहीं है, ठीक है, लेकिन खालिक की कसम खाना या खालिक की किसी सिफत की कसम खाना वो जो है जायज है, ठीक है। खालिक की कसम खाना यानी वल्लाही, ठीक है ना, अल्लाह ताला की कसम खा रहे हैं, या कसम है कुरान की, ठीक है, तो कुरान जो है वो अल्लाह ताला ही की एक सिफत है, ठीक है, अल्लाह ताला का कलाम है ना कुरान, लेकिन किसी और चीज की हम कसम नहीं खा सकते, तेरे सर की कसम, तेरी जान की कसम, है ना, तेरी बात की कसम, नहीं, ये सब हम जायज, ये मतलब गुनाह है ये, ठीक है, जायज का मत ना होने का मतलब कि अगर खाएंगे तो गुनाह पड़ेगा भाई, ठीक है। तो अल्लाह ताला तो खाते हैं ना, वशम से वहा वल कमर इजा तलाहा वल नहार इजा जल्लाहा, खूब अल्लाह ताला ने अपने मखलूक مخلوقات کی قسم کھائی، حتیٰ کہ گھوڑوں تک کی قسم کھائی ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی ایک مخلوق یعنی ہواؤں کی قسم کھا رہے ہیں. فالفارقات فرقا، ٹھیک ہے، فارقات کا مطلب فرق کرنے والی، پھاڑنے والی، ٹھیک ہے. جب کسی چیز کو آپ پھاڑ دیتے ہیں تو پھر اس کے اجزاء الگ الگ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، فرق ہو جاتے ہیں ان میں. تو ان کی بھی یعنی یہ قسم جو ہے وہ آگے چل رہی ہے. فل فارقاتی، یہ بیسیکلی جو ہے نا پھر وہ ناشرات اور جو پیچھے جو جو اللہ تعالیٰ نے ہوا کی قسمیں بیان کری نا، تو اس کی کنٹینیویشن ہے کہ اب یہ ہوائیں کرتی کیا ہیں، یہ فرق کر دیتی ہیں. فارقات، فرق کرنے والی، فرقن، ٹھیک ہے نا، خوب بانٹ کر کے فرق کرتی ہیں، الگ الگ کر کے چیزوں کو فرق کر دیتی ہیں. فل ملقیات ذکرن، پھر فرشتوں کی جو اتار کر لائیں وحی، ٹھیک ہے نا. اب بالکل آخری جو ہے نا قسم وہ کیا، ملقیات ذکرن، تو ملقیات کا ترجمہ حضرت شیخ الہند نے کیا فرشتوں سے، ٹھیک ہے نا. ملقیات کا لفظ کیا ہے، القا یلقی القا ان، ٹھیک ہے، یعنی ڈال دینا. القا کرنے کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز ڈال دینا، ٹھیک ہے، یا رکھ دینا، ٹھیک ہے. تو فرشتے کیا کرتے ہیں، یہ وحی کو لے کر کے آتے ہیں اور پیغمبر کے سامنے ڈال دیتے ہیں یا پیغمبر کے اندر ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو ملقیات کہا، ٹھیک ہے. اور وحی کے لیے ذکر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ انا نحن نزلنا ذکر، ٹھیک ہے، کہ ہم نے بے شک جو ہے وہ ذکر کو نازل کیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کا لفظ استعمال کیا، اور قرآن مجید کیا ہے، وحی ہے، ٹھیک ہے. تو فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا، اچھا، عُذْرًا او نُذْرًا، عُذْرًا الزام اتارنے کو یا ڈر سنانے کو. عذر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جب آپ کسی الزام کو اپنے اوپر سے اتارنا چاہتے ہیں نا تو آپ عذر کرتے ہیں، ایکسکیوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے الزام اتارنے کو، یہ جو وحی نازل کرتے ہیں نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو حق ہوتا ہے اس کے اوپر سے الزام اتر جاتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے لوگ جو ہے نا وہ اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اس کو جو ہے وہ غلط سمجھ رہے تھے، لیکن وحی کے آنے سے حق کے اوپر سے یہ برائی کا الزام اتر جاتا ہے، غلط ہونے کا الزام اتر جاتا ہے، اور حق جو ہے وہ حق ثابت ہو جاتا ہے. او نذرن، نذرن نذیر، نذیر کا مطلب کیا ہوتا ہے، ڈرانے والا، ٹھیک ہے. تو نذرن کا مطلب کہ جو بات نہیں مانتا ہے وحی کی، تو اس کو ڈرانے کے لیے، ٹھیک ہے. تو عذرن کے لیے یا نذرن کے لیے. او کا مطلب ہوتا ہے یا، ٹھیک ہے، انگریزی والا اور، او آر. اچھا، انما توعدون لواقع، سوائے اس کے نہیں کہ. انما یہ کلمہ حصر ہوتا ہے جو کہ کسی بات کو بہت ہی محقق کر دیتا ہے، کنفرم کر دیتا ہے. تو انما توعدون کہ جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے نا، وعدہ یعدو، ٹھیک ہے، وعدہ کیا جانا، تو آدونا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی نبی علیہ السلام السلام آپ سے جو وعدہ کیا ہے نا، یا جو انسانیت سے وعدہ کیا گیا ہے، لواقع، ضرور بالضرور وہ واقع ہونے والا ہے، ٹھیک ہے. یعنی قیامت کا وعدہ کیا گیا ہے کہ بھئی وہ ہوگی، اس میں جزا بھی ہوگی، اس میں سزا بھی ہوگی، تو وہ ضرور بالضرور واقع ہونے کی چیز ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس ایسے ہی کہہ دیا گیا ہے وہ ہونے والا کچھ نہیں ہے. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس جب، فا کا ترجمہ پس، ٹھیک ہے نا، سو انگریزی میں جیسے کہیں، النُّجُومُ ستارے، طُمِسَتْ مٹا دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی مٹا دیے جائیں گے، اب اس کی تفسیر آگے انشاءاللہ آئے گی. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان جھروکے پڑ جائیں گے، جھروکے پڑ جائیں، یعنی کسی جیسے ہوتا ہے نا کہ جھروکے کیا ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں، ठीक है, तो उनको झरोके कहते हैं, जिनके अंदर से जो है ना वो आप झांक के देख सकते हैं। ठीक है, तो आसमानों के अंदर जो है ना वो इस तरह से खिड़कियां बन जाएंगी, यानी आसमान जो है वो तार तार हो जाएगा, उसके अंदर जो है ना ओपनिंग्स बन जाएंगी। ठीक है, तो जिस वक्त आसमान जो है ना वो उसमें झरोके पड़ जाएंगे, यानी ओपनिंग्स विंडोज क्रिएट हो जाएंगे उसके अंदर। व इदल जिबालु नुसिफत, और जब पहाड़ नुसिफत उड़ा दिए जाएंगे, ठीक है, यानी वो ऐसे उड़ रहे होंगे कि जैसे कि रंगीन धुनकी हुई रुई जिस तरीके से हवाओं के अंदर उड़ रही होती है, उस तरीके से पहाड़ उड़ रहे होंगे। वइदा अर्रुसुलु उक्कितत, और जब रुसुल, रसूल की जमा रुसुल, यानी जो पैगंबर अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजे थे ना, तो कयामत के दिन उक्कितत वो रसूल क्या होंगे कि वो उनका वक्त मुकर्रर हो जाए। क्या मतलब वक्त मुकर्रर हो जाए? कि वो जो है ना वो सारे के सारे अपने अपने मकाम के ऊपर पहुंचा दिए जाएंगे। ठीक है, यानी अपनी अपनी एक तो वो मैदान हशर की बात हो रही है, तो जहां पे उनकी उम्मतों का हिसाब हो रहा होगा, तो वहां पे रसूलों को पहुंचा दिया जाएगा, ताकि उनके सामने जो है वो उनकी उम्मत का हिसाब हो। क्योंकि उम्मत से सवाल किया जाएगा ना कि भाई ये कौन थे, है ना, ये कौन थे, ये अल्लाह के रसूल थे, तो उम्मतें जो है वो मुकर जाएंगी, सवाए नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के, बाकी सारी उम्मतें जो है ना वो अपने रसूलों के बारे में मुकर जाएंगी, नहीं, ये कोई कोई नहीं थे, इन्होंने अपना कोई काम नहीं किया, झूठ बोल देंगी उम्मतें। ठीक है ना, यानी उम्मतों के अंदर जो काफिर थे वो झूठ बोल दिया कर बोल देंगे। लेकिन ये मुकाम जो है ना, मीकात का जैसे जैसे लफ्ज होता है, मीकात का लफ्ज इसी से निकला, ठीक है, कि एक सर्टन मुकाम होता है जहां पे जाकर के आप एहराम बांधते हैं। ठीक है, तो जब रसूल जो है ना वो अपने अपने मीकातों के ऊपर पहुंचा दिए जाएंगे, या अपने अपने डेजिग्नेटेड जगह है वहां पे पहुंचा दिए जाएंगे। लिअय्यि यौमिन उज्जिलत, किस दिन के वास्ते उन चीजों में देर है। अय्यि यौम, कौन सा दिन? ठीक है, ली का मतलब होता है लिए, अय्यि यौमिन, कौन सा दिन या किस दिन उज्जिलत उन चीजों में देर है, यानी अजल का मतलब होता है कि एक जो मुकर्रर मुद्दत होती है, मुकर्ररा मुद्दत, ठीक है, क्या है वो, इजा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दमून, कि जब मुकर्ररा वक्त आ गया, यानी वक्त ओवर हो गया, मौत आ गई, इजा जा अजल हूं, जब उनकी मौत आ जाती है ना, तो फिर उसके बाद ना उसको मुअख्खर किया जा सकता है, ना उसको जल्दी लाया जा सकता है। मौत के वक्त, मौत मौत के वक्त से पहले नहीं आ सकती, और ना मौत के वक्त के बाद आ सकती है, जो अल्लाह ताला के यहाँ वो मुकर्रर वक्त है, उसी वक्त मौत आएगी। ठीक है, तो ये जो दिन है ना, यानी अय्यि यौमिन, किस दिन के लिए उज्जिलत, यानी जल्दबाजी कर रहे थे आसान जुबान के अंदर। खैर, अभी तो हम ये तर्जुमा पढ़ रहे हैं, बाकी खुलासे तफसीर के अंदर मजीद इसको खोला है, और फिर मारफू मसाइल के अंदर और भी ज्यादा, तो जो चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आएगी इंशाल्लाह वहां पे समझ में आ जाएगी। लियौमिल फसल, ठीक है, फैसले के दिन के वास्ते, उस फैसले के दिन के लिए, ठीक है, कयामत के दिन की बात हो रही है। इन्नमा तूअदूना लवाक़िअ से क़यामत के दिन का जिक्र जो शुरू हुआ है, तो यहाँ पर वो वही चल रहा है यहाँ तक। लियौमिल फसल, पास फैसले के दिन के वास्ते, फैसला भी क्या होता है कि जिसके अंदर फासला कर दिया जाता है, ठीक है, हक में और बातिल में फासला कर दिया जाता है, वही फैसले का दिन होता है। ठीक है, वमा अदराका मा यौमुल फसल, और तूने क्या समझा, ठीक है, कि यौमुल फसल क्या है, ठीक है, यानी अदराका, क्या समझाया उसने तुझको कि यौमुल फसल क्या, यानी क्या तुम्हें बात समझ में आई अब तक, ठीक है, कि ये यौमुल फसल क्या है। बहरहाल आसान अल्फाज के अंदर के, और क्या लिखा है उन्होंने, और तूने क्या बूझा क्या है फैसले का दिन, ठीक है। वैलुई यौम इज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, खराबी है जिस दिन तकजीब करने वालों के लिए। तकजीब करने का मतलब होता है झुटलाना, कि कोई आदमी आकर के आपको सच सच बात बता रहा है और आप उसको झुटला दें। क्या मतलब, आप उसको कह दें कि नहीं तुम सच नहीं बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, इसको झुटलाना कहते हैं। और अरबी में उसको कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीबन कहते हैं, तकजीब करना, ठीक है। तो जिस दिन खराबी है, वैल है झुटलाने वालों को, झुटलाने वालों के लिए जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को झुटलाया, अल्लाह के पैगंबरों को झुटलाया। अ लम नुहलिकिल अव्वलीन, आ का तर्जुमा क्या लम नहीं नुहलिक, हम हलाक कर देंगे, हमने हलाक कर दिया अव्वलीन, जो पहले आए हुए लोग थे, यानी पिछली उम्मतों को क्या हमने हलाक नहीं कर दिया, ठीक है, जिन्होंने तकजीब करी थी। सारी उम्मतों को तो नहीं हलाक किया ना, सिर्फ तकजीब करने वालों को हलाक किया अल्लाह ताला ने। सुम्मा नुतबिउहुमुल आखिरीन, फिर जो आखिर में आए उन्होंने उन पहले वालों की इत्तबा करी, ठीक है। क्या मतलब कि जो बाद में उम्मतें आईं, जिन्होंने के तकजीब करने में पिछली उम्मतों की इत्तबा करी, पीछे पीछे चले, उन्होंने फॉलो किया, वही वाली हरकत करी जो कि पिछली उम्मत ने करी थी। जैसे कौम समूद आई, कौम समूद ने कौम आद की इत्तबा करी तकजीब करने में, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने कौम समूद को भी हलाक कर दिया। कि फिर उसके बाद जो है वो और कौमें आई, तो और उन्होंने अगर तकजीब करने में पिछली कौमों ही के रास्ते को इख्तियार किया तो अल्लाह ताला ने उनको भी हलाक कर दिया। कजालिक, इसी तरह से, नफअलु बिल मुजरिमीन, हम जुर्म करने वालों के साथ करते हैं, ठीक है। नफअलु फेल से निकला, हम करते हैं, बिल मुजरिमीन जुर्म करने वालों के साथ, ठीक है, यही 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 हम करते हैं जुर्म करने वालों के साथ, कि उनको सजा देते हैं। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, खराबी है जिस दिन तकजीब करने वालों के लिए। अलम नखलुकुम मिम्मा इम्महीन, आ क्या लम नहीं नखलुकुम, हमने तखलीक किया तुमको, हमने तखलीक किया तुमको, मिम से, मा पानी, महीन एक बहुत ही जलील गंदा, ठीक है। एहानत, एहानत का लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल करते हैं जलील के लिए ना, पस्त चीज के लिए, इसने उसकी एहानत कर दी, इसने उसको जलील कर दिया, ठीक है। तो महीन जो है वो उसी उसी लफ्ज के एक डेरिवेटिव फॉर्म है। तो एक एक बड़े जलील पानी से क्या हमने तुमको तख्लीक नहीं किया। फजअलनाहु फी करारिम मकीन, फिर रखा उसको एक जमे हुए ठिकाने में, ठीक है, यानी ये पूरी फिर वही जो ह्यूमन डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट वगैरह की जो स्टोरी और जगहों पर जो कुरान मजीद में आई हुई है, तो इसी के एक बहुत ही मुख्तसर हिंट जो है वो यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है, कि फिर इसको जो है वो जो सीमन होता है उसको फिर हमने एक जमे हुए ठिकाने में रख दिया, यानी उसको फर्टिलाइज कर दिया। इला कदर मालूम, एक मुकर्ररा वक्त तक, एक वादे मुकर्रर तक, ठीक है, फिर वहां पर उसकी पूरी डेवलपमेंट हो रही होती है। एक सर्टन टाइम होता है, 9 मंथ्स का पीरियड जो होता है, फिर उसके अंदर उसकी सारी डेवलपमेंट हो रही होती है। फकदर ना, फिर हम उसको पूरा कर सके, फनेमल कादिरून, सो हम क्या खूब सकत वाले हैं। सकत वाले का मतलब क्या, कादिर होना, किसी चीज किसी की किसी के ऊपर सकत होना, ये लफ्ज जरा अब इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसको उसके ऊपर सकत हासिल है, यानी कुदरत हासिल है, ठीक है। तो हमें फकदर ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम कादिर हैं इस पर, ठीक है, فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ, بس کتنا اچھا قدرت رکھنے والا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی ہم کتنے اچھے قدرت رکھنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی تعریف فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, خرابی ہے اس دن یا جس دن, خرابی ہے تکذیب کرنے والوں کے لیے. علم, پھر اللہ تعالیٰ ایک یعنی ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے پھر ایک سوال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, علم کیا نہیں, نجعل الارض کفاتا, ہم نے بنا دیا زمین کو سمیٹنے والی, کفاتن سمیٹنے والی, احیاء و امواتن, یعنی وہ اپنے اندر چیزوں کو نا سمیٹتی ہے, اکٹھا کرتی ہے, زندہ کر زندوں کو بھی, احیاء و امواتن, اور مردوں کو بھی, ٹھیک ہے. کیا ہم نے نہیں بنائی زمین سمیٹنے والی زندوں کو اور مردوں کو, وجعلنا فیہا, اور ہم نے رکھ دیے یا ہم نے بنا دیے اس کے اندر رواسیا, شام خاتن, کیلے, شام خاتن جو کہ پیوست ہوئی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو حضرت نے یہاں پہ باقاعدہ ترجمہ ہی کر دیا, یعنی لفظی ترجمہ نہیں کیا, بلکہ اس کا جو مفہوم بنتا ہے کہ یہاں پر مراد پہاڑ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کیلوں کی طرح زمین کے اندر گاڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے اور ہم نے رکھ دیا اس کے اندر, یعنی زمین کے اندر بوجھ کے لیے پہاڑ, اونچے اونچے پہاڑ. وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا, اور ہم نے پلایا تم کو, سقا کہتے ہیں پانی پلانا, تو اسقا کا مطلب ہم نے پلایا تم کو, اسقینا ہم نے پلایا تم کو, ماءً پانی, فراتن ٹھیک ہے پیاس بجھانے والا. تو فرات کا جو لفظ ہے اصل میں پیاس بجھانا اس کا ترجمہ ہوتا ہے, اور اسی لفظ کو ہی جو ہے وہ ایک عراق کے اندر جو دریا ہے اس کا نام بھی فرات ہی رکھ دیا گیا, فرات ہی رکھ دیا گیا ہے نا. دو دو دریا ہیں عراق میں, ایک دجلہ اور دوسرا جو ہے وہ فرات, ٹھیک ہے. تو کبھی کسی چیز کا نام جو ہے وہ اس کی کسی صفت کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پانی تو ہوتا ہی ہے پیاس بجھانے والا. ویل یومئذ للمکذبین, بار بار اللہ تعالیٰ نا اس والی بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں اس سورت کے اندر, ٹھیک ہے, آخر تک جو ہے وہ اس طرح سے ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہلاکت ہے جس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے. انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون, چل کر کے دیکھو جس چیز کو تم جھٹلاتے تھے. انطلقوا, جیسے سورہ کہف کے اندر فانطلقا, وہ دونوں جو ہے وہ چلے, ٹھیک ہے. تو انطلقوا, تم جو ہے نا وہ چل کر کے دیکھو جس چیز کو تم جھٹلاتے تھے. انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب, چلو ایک چھاؤں میں, ظل کہتے ہیں چھاؤں کو جہاں پہ سایہ ہوا ہوتا ہے, الى ظل ذی ثلاث شعب, تین شعب والی, ٹھیک ہے, یعنی چل کر کے تم دیکھو تین شعب والی چھاؤں کو, ٹھیک ہے. لا غلیل ولا یغنی من اللہب, نہ گہری چھاؤں اور نہ کچھ کام آئے تپش میں, ٹھیک ہے, یعنی ایک ایسی چھاؤں ہے وہ کہ جو کہ تپش میں کام آنے والی چھاؤں نہیں ہے. ذلیل کا ترجمہ کیسے کیا, جو ذل کا ہی ایک مبالغہ والی فارم ہے, ٹھیک ہے, ذل تو چھاؤں کو کہتے ہیں نا, تو ذلیل مطلب بہت زیادہ گہری چھاؤں. تو یہ جو چھاؤں ہے نا جس کی طرف جا کر کے دیکھنے کو کہہ رہے ہیں, تو یہ کوئی زیادہ گہری چھاؤں نہیں ہے, اور چھاؤں کے اندر ایک اچھی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ دھوپ کی گرمی سے بچاتی ہے, لیکن یہاں جس چھاؤں کی بات ہو رہی ہے یہ دھوپ کی گرمی سے بچانے والی چھاؤں نہیں ہے, ला युगनी मिनल लहब, ठीक है, लहब से फायदा देने वाली नहीं है। अगना युगनी का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए काफी हो जाना, ठीक है, किसी चीज के लिए काफी हो जाना, सफिशेंट हो जाना, किसी मुश्किल के अंदर यानी काफी हो जाना, मुश्किल से बचाने के काबिल हो जाना, ठीक है। तो ला युगनी ये काफी नहीं होगी, मिनल लहब, लहब से बचाने के लिए। लहब का लफ्ज तब्बत यदा अबी लहब यूं व तब, है ना, नबी अलैहिस्सलाम के उस चचा के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, तब्बत यदा, टूट जाए इसके दोनों हाथ अबी लहब, लहब के बाप के, क्योंकि उसका जो कुनियत थी वो अबू लहब थी। और लहब उसको क्यों कहते थे अबू लहब, क्योंकि उसका जो रंग था ना बड़ा सुर्ख रंग था उसका, थोड़ा रेडिश किस्म का उसका, जैसे कि आग का शोला हो, ठीक है ना। और वो एक बड़े खूबसूरती के तरीके से अल्लाह ताला ने उसको बड़ी खूबसूरती दी थी, ठीक है, कि वो बड़ा सुर्ख व सफेद, जैसे उर्दू के अंदर किसी को कहा जाता है, बड़ा ये तो कॉकेशियन पठान जिस तरह से उनके चेहरे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही लफ्ज लहब जो है ना वो लिटरली जहन्नुम की आग के शोले के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ये जो छांव होगी ये उस आग से, उस आग की जो तपिश होगी ना उससे बचाने के लिए काम नहीं आएगी। इन्नहा तर्मी बिशररिन कल कसर, कि वो आग फेंकती है चिंगारियां जैसे महल, ठीक है। इन्नहा बेशक वो, यानी वो जो जहन्नुम की आग होगी होगी ना, तर्मी, रमा यर्मी का मतलब होता है फेंकना, ठीक है, जैसे रोमांच जो है वो फेंकने वालों को कहते हैं, या गन गन को भी कहते हैं जो भी गोली को फेंकती है, ठीक है। तो बेशक वो फेंकती है बिशर शरर, शरर यानी चिंगारी, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी चिंगारियां, कल कसर यानी कसर की जितनी बड़ी चिंगारियां। कसर का मतलब क्या होता है, महल, यानी एक बड़ा सा जो घर होता है ना, छोटे मोटे घर को जो है वो कसर नहीं कहते, बहुत बड़े घर को जो है महल कहते हैं ना, कसर कहते हैं। तो इतने बड़ी बड़ी जो है ना वो चिंगारियां फेंकने वाली आग होगी। कअन्नहु जिमालतुन सुफर, गोया कि वो ऊंट है जर्द, ठीक है, यानी वो अब एक और तमसील दी उन चिंगारियों के साइज को समझाने के लिए, कि जैसे कि वो जर्द ऊंट है, यानी बड़े बड़े ऊंट जो है ना वो उतने इतना बड़ा उनका साइज होगा। वैलुन यौम इज़्ज़िल मुकज़्ज़िबीन, खराबी है जिस दिन तकजीब करने वालों के लिए। हाजा यौम ला यंतकून, ये यौम दिन है कि ला यंतकून, के ना बोलेंगे, ठीक है ना, ये वो दिन है कि ना बोलेंगे, नतका यंतकू, ठीक है। नुतुक, नुतुक का जो लफ्ज है ये बोलने के लिए इस्तेमाल होता है, तो नतका यंतकू का मतलब होता है बोलना। तो ला यंतकून के जिस दिन जो है ना वो कोई बोल नहीं सकेगा, वला युजनू, और ना उनको हुक्म हुआ, लहुम वला युजनू लहुम, और ना उनको हुक्म हुआ कि फयातज़िरून, कि वो तौबा करें, ठीक है। यानी उस दिन जो है ना वो तौबा वौबा करने का कोई हुक्म नहीं हो रहा, अब तो हिसाब का टाइम है, अब तुमको तौबा करने का हुक्म नहीं दिया जा रहा, तौबा करने का हुक्म तो दुनिया में तुम्हें दिया गया था, तूबू इलल्लाह जमीअन, ठीक है ना, सब के सब जो है वो तौबा करो अल्लाह ताला के सामने, लेकिन तुमने उस तौबा के हुक्म को दुनिया के अंदर हाँस नहीं डाली, ठुकरा दिया उस हुक्म को। तो अब कयामत के दिन जो है ना वो तुम्हें तौबा का हुक्म नहीं दिया जा रहा, अब तो तुम्हारा हिसाब होना है कि तुमने तौबा क्यों नहीं करी, ठीक है। वैलुन यौम इज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, खराबी है जिस दिन तकजीब करने वालों के लिए। हाजा यौम फ़ख्र, ये फैसले का दिन है, जमअनाकुम والاولین، हमने जमा किया तुमको और अव्वलीन यानी तुमसे पहले आने वालों को। ठीक है, तो हर इंसान को उनको ये कहा जा रहा है कि तुमको जमा किया, तुमसे पहले आने वालों को जमा किया। ठीक है, अब ये आखिरी इंसान से भी यही कहा जा रहा होगा, दुनिया के अंदर जो बिल्कुल आखिरी इंसान आया होगा उसको भी यही कहा जाएगा ना, जमानाकुम, हमने तुमको जमा किया और तुमसे पहले आने वालों को जमा किया। ठीक है, तो इस तरह से सारी इंसानियत जो है वो उसके अंदर कवर हो गई। इन कान लकुम कैदुन फकीदून, बस अगर तुम्हारे लिए कोई, तुम्हारे कान लकुम तुम्हारे लिए कुछ है, कैदुन, कैदुन का मतलब कैद कहते हैं प्लानिंग को, तदबीर करने को, ठीक है ना, चाल चलने को। तो अगर तुम्हारे पास कोई चाल है ना तो चलो मेरे मेरे खिलाफ, फकीदूनी, ठीक है ना। पखी दूनी का मतलब क्या है, क्योंकि नून के नीचे जो जेर है ना, ये दरअसल याए मुतकल्लिम होता है, जिसको के लिखने में हटा दिया जाता है और सिर्फ एक जेर छोड़ दी जाती है। ठीक है, तो की दूनी है ये कि तुम चाल चलो मेरे खिलाफ, अगर तुम्हारे पास कोई दाव है ना तो चलो दाव, जैसे दो, मतलब एक तस्वीर समझाने की खातिर कि दो पहलवान जो है ना वो एक दूसरे के सामने एक अखाड़े में आते हैं ना, तो एक तो होता है जरा कमजोर सा और एक होता है बहुत ताकतवर वाला। तो ताकतवर वाला जो है ना वो इब्तिदा नहीं करता, बल्कि वो कमजोर से कहता है मारो मुझे मारो मुझे, क्योंकि उसको पता होता है कि ये मुझे मार ही नहीं सकता, इसके पास इतनी ताकत ही नहीं है, ये मुझे हरा ही नहीं सकता। तो वो बड़े मजे से कहता है मारो मुझे मारो मुझे, जो तुम्हें आता है ना कर लो। ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी जो है ना वो इन लोगों से जो के अल्लाह ताला से दुश्मनी इख्तियार किए हुए बैठे हुए थे ना, तो अल्लाह ताला, अच्छा तुम्हारे पास कुछ है चार, चलो मेरे खिलाफ। तो ठीक है, वैलुई यौम इज़िल मुकज़्ज़िबीन, खराबी है जिस दिन तकजीब करने वालों के लिए। इन्नल मुत्तकीन फी ज़िलालिन वउयून, कि बेशक तकवा इख्तियार करने वाले उस दिन जलाल में होंगे, साय में होंगे, वउयून और नहरों में होंगे। ठीक है, यानी कि बेचारे डुबकियां खा रहे होंगे नहरों के अंदर, बल्कि वो ऐसी जगहों पे होंगे जहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी नहरें मौजूद होंगी। ठीक है, तो नहरों वाली जगहों में होंगे यानी बागात में होंगे, और वहां पर ऐसा साया होगा जो कि उनको बहुत खुशनुमा खुशगवार महसूस हो रहा होगा। व फवाकिहा मिम्मा यश्तहून, और फवाके मेवे होंगे उनके पास, ड्राई फ्रूट्स, मिम्मा यश्तहून, कि जैसे जिस किस्म के वो चाहें चाहते होंगे, उनको जिन जिन चीजों की दिल के अंदर ख्वाहिश शहवत हो पैदा होगी ना कि हम ऐसी ऐसे मेवे खाएं और हम ऐसी चीजें खाएं, वो सारे के सारे मेवे उनके लिए मौजूद होंगे। और उनको कहा जाएगा कुलू खाओ, वशरबू और पियो, हनी अम मजे से, बिमा कुन तुम तामलून, ये तुम अच्छे से खाओ अच्छे से पियो और बड़े मजे से रहो, हनी अमरी आ, है ना, ये जो निकाह पढ़ाया जा रहा होता है तो उसमें ये वाली सूरह निसा की गाल बनाया था ना, हनी अमरी आ, ठीक है ना, बड़े मजे से जो है वो जिंदगी गुजारने की उसके अंदर। तो जन्नत में भी ऐसे कहा जाएगा बिमा कुन तुम तामरून, क्यों तुम खाओ क्यों तुम पियो क्यों तुम मजे से रहो, क्योंकि उन अमलों के वजह से जो कि तुमने किए हैं। ठीक है ना, उन अमलों के सबब, बिमा, बिमा का लफ्ज होता है बसबब, उस वजह से, कुन तुम तामलून, जो तुम किया करते थे दुनिया की जिंदगी के अंदर। ठीक है, क्या मतलब, तुम मेरे नबी के ऊपर ईमान लाया करते थे, तुम उनके ऊपर एतमाद किया करते थे, तुम उनकी बात को माना करते थे, तुम उनके हुक्मों के मुताबिक अमल करते थे, और जिस चीज से वो रोक दिया करते थे उनसे रुक जाया करते थे। ये वो तुम्हारे अमल थे कि जिनकी वजह से अब तुम मजे उड़ाओ। ठीक है, इन्ना कदालिका नजजिल मुहसिनीन, बेशक ऐसे ही हम जजा देते हैं एहसान करने वालों को, नेकियां करने वालों को हम ऐसे ही जजा देते हैं। ठीक है, नजजी, हम जजा देते हैं। वैलुई यौम इज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, खराबी है जिस दिन تکذیب کرنے والوں کے لیے، کلو کھاؤ، وتمتعوا قلیلا، اور برت رو تھوڑے دنوں. اب جو ہے نا وہ دنیا میں جو منافقین مشرکین کافرین ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، کھا لو تم اور تھوڑے سے مزے اڑا لو، تمتعوا قلیلا. کافر بھی تو دنیا کے اندر مزے کرتا ہے نا، ہے نا، اپنی من مرضی کی زندگی گزارتا ہے یا کم از کم گزارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تھوڑے چھوٹے 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 مزے. انکم مجرمون، بے شک تم لوگ تو مجرم ہو، تو کھا لو اور تھوڑا سا مزہ اڑا لو، بعد میں تمہارے لیے کوئی مزہ نہیں ہے، بعد میں تو میرے ماننے والے بندوں کے لیے مزہ ہے اور وہ کبھی نہ ختم ہونے والا مزہ ہے. تمہارے لیے تو جو تھوڑا سا مزہ ہے نا وہ تو بہت ہی قلیل ہے. ویلوئیں یوم اذ للمکذبین، خرابی ہے جس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا ارْكَعُوا، رکو کرو، لَا يَرْكَعُونَ، وہ رکو نہیں کرتے تھے، یعنی وہ جھکتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، نہ تو فزیکلی نماز پڑھتے تھے رکو، کیونکہ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اوپر جو نماز فرض ہوئی ہے تو اس کے اندر رکو ہے، جبکہ پچھلی امتوں کے اوپر بھی نماز ہوتی تھی، اس میں قیام ہوتا تھا، سجود ہوتا تھا، رکوع نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے. تو ان مشرکین مکہ کو کہا جاتا تھا تم یہ والی نماز پڑھو جو نماز یہ سکھا رہے ہیں تمہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ لوگ پڑھ رہے ہیں مسلمان، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. اور اصطلاحی یعنی اور اس کے علاوہ جو مفہوم ہے اس کا کہ بھئی ان کے سامنے جھکو لیکن یہ نہیں جھکتے تھے، یعنی ان کی بات مانو لیکن یہ نہیں مانتے تھے. وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خرابی ہے جس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، بس کس بات کے اوپر اس کے بعد یہ ایمان لے کر آئیں گے، کس بات کے اوپر اس کے بعد یہ لوگ ایمان لے کر کے آئیں گے، یعنی ساری باتیں تو ہم نے کر دی ہیں، اب یہ کس بات کو مانیں گے جو ہم نے بتا دی ہیں، ان کے اوپر ایمان لے کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے. تو ایو حدیثن، کون سی والی بات، حدیث کہتے ہیں بات کو، بعدہ اس کے بعد، یؤمنون، یہ ایمان لے کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے. تو آج کی کلاس جو ہے وہ ترجمے میں ہی مکمل ہو گئی. اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ درمیان میں بھی پوچھ سکتے تھے، لکھ کر کے چیٹ ونڈو تو آپ سب کے سامنے اویلیبل ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی رکا ہوا تھا کہ آخر میں پوچھ لیں گے تو پھر وہ ابھی پوچھ سکتے ہیں، ورنہ اگلی کلاس میں پھر ہم خلاصہ تفسیر پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ. کوئی جنرل اس کلاس کے بارے میں یا آج جو ٹاپک ڈسکس ہوا تھا؟ اچھا، انہوں نے جو سوال کیا ہے نا، یہ والا سوال آپ نے درمیان میں پوچھنا تھا، زیادہ بہتر ہوتا. خیر، ان کو کہا ہوا تھا کہ جی کلاس میں آپ سوال کیجیے گا، تو انہوں نے اب یہاں پہ وہ سوال لکھ دیا ہے کہ پلیز میری رہنمائی کریں کہ میں اپنی طلب کو رغبت کے درجے میں اور رغبت سے ضرورت کے درجے میں کیسے لا سکتی ہوں. جزاک اللہ خیر کثیرہ. یہ سوال اس کا پورا کا پورا ایک کانٹیکسٹ ہے، تو وہ بھی سمجھانا پڑے گا کہ طلب کیا چیز ہوتی ہے، رغبت کیا چیز ہوتی ہے اور ضرورت کیا چیز ہوتی ہے. تو بہرحال جس کو جانا ہے تو وہ کلاس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے تو آپ جا بھی سکتے ہیں، جو سننے کے لیے رکنا چاہیں وہ رک سکتے ہیں. ویسے یہ کلاس ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی بیٹھنا بھی جو ہے وہ لازمی ہو، کام کاج کے ساتھ بھی یہ کلاس سنی جا سکتی ہے. اگر مجبوراً کام کاج کلاس کے دوران کرنا پڑ رہا ہے تو ساتھ ساتھ بھی کلاس سن سکتے ہیں اس والے کلاس کو، ٹھیک ہے. تو اس میں ایسی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، البتہ توجہ جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ کلاس کی طرف رہے. یہ جو پورا کا پورا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے یعنی پروردگار نے جو ہمیں بنایا ہے نا، تو ہمیں تو بنایا ہے اپنے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. اسی وجہ سے ہمارا نعرہ، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک ایمان والے کا نعرہ کیا ہونا چاہیے، اس کا نعرہ یہ ہونا چاہیے، یعنی اس کا سلوگن، اس کا زندگی گزارنے کا جو ہے وہ منشور، وہ کیا ہونا چاہیے، لا مرغوبی الا اللہ، ला मतलूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है ना। ये हमारी जिंदगी का मंशूर होना चाहिए जिसके तहत हम अपनी पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं कि मेरी रغبत जो है ना वो कोई चीज नहीं है सिवाय अल्लाह के, मेरी मरगूब चीज अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है, मेरी मतलूब यानी मेरा मतलूब अल्लाह के सिवा और कोई भी नहीं है, मेरा महबूब अल्लाह के सिवा और कोई भी नहीं है, ला महबूबी इल्लल्लाह या ला महबूबी इल्लल्लाह और ला इलाह इल्लल्लाह, मेरा माबूद अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है, उसको माबूद ला माबूदी इल्लल्लाह भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों जो चीजें हैं ना वो अल्लाह ताला ने अपने लिए खास कर ली है कि ऐ मेरे बंदे तुझे तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब बंदा जो है वो रसूल की मानने के बजाय शैतान की मानना शुरू कर देता है, ठीक है, तो फिर ये तरतीब उलट जाती है कि उसकी जो है ना वो रगबत फिर अल्लाह ताला से हटना शुरू हो जाती है और मखलूक की तरफ चली जाती है जो कि उससे कमतर दर्जे की चीज थी। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, सबसे ऊंची मखलूक इंसान है, इंसान के ऊपर अल्लाह ताला की जात है, तो उसकी रगबत उसकी तलब उसकी मोहब्बत और उसकी इबादत तो अपने ऊपर वाले के लिए होनी चाहिए ना। लेकिन जब वो शैतान की बात मान लेता है तो फिर उलट जाता है मामला, अब उसकी रगबत नीचे वालों के लिए शुरू हो जाती है जो उसके नीचे थे, जैसे के जिन, जैसे के फरिश्ते, जैसे के हैवान, जैसे के पत्थर, लकड़ी, सोना, चांदी, ये सारी चीजें तो इंसान की से कमतर चीजें हैं, ठीक है ना। तो अब जो है ना ये उनकी तरफ रगबत करना शुरू हो जाता है, कोई जो है वो जानवर की तरफ रगबत कर रहा है, कोई जो है वो फरिश्ते की तरफ रगबत कर रहा है कि जी फरिश्तों को जो है ना वो पता नहीं क्या क्या बना दिया, कोई जिन्नों की तरफ रगबत कर रहा है कि अल्लाह की का हुक्म मानने के बजाय जिन्नों का हुक्म मानना शुरू कर दिया, जो ना जो शैतान जिन होते हैं उनका हुक्म मानना शुरू कर दिया, कोई जो है वो सोने चांदी की तरफ रगबत करना शुरू हो गया कि उसकी वजह से अल्लाह का हुक्म तोड़ना शुरू कर दिया इसने, और किसी ने जो है वो पत्थर के बुत बना लिए, लकड़ी के बुत बना लिए और वो उनकी तरफ रगबत करना शुरू कर दिया, उनसे मोहब्बत करनी शुरू कर दी, ठीक है ना। तो ये तरतीब उलट जाती है, ठीक है। मज़ारों के मुर्दे भी इसमें शामिल हैं, मज़ारों के मुर्दे भी इसके अंदर शामिल हैं, हाँ, अगर वो उनकी तरफ रगबत करने में जो है ना वो शरीयत की के हुक्मों को तोड़ रहा है, ठीक है, कि मज़ारों के ऊपर जा रहे हैं और जो है वो अल्लाह ताला ने जो जिस चीज़ से मना किया है वो वाले काम कर रहे हैं वहां पर जा करके, ठीक है, तो ये भी उसके अंदर शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो रगबत है ये सबसे कम दर्जा होता है कैफियत का, ये इब्तिदा होती है यहां से बात कि आप किसी चीज की तरफ मायल होते हैं, आपकी रगबत उस चीज की तरफ होती है, जब ये रगबत बढ़ जाती है तो वो तलब में तब्दील हो जाती है कि अब जो है ना वो आप उस चीज को हासिल भी करने की जस्तजू शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं तलब। और जब ये तलब जो है वो इंसान करता है तो उसको फिर वो चीज ना हासिल भी हो जाती है, क्योंकि वो जिस चीज के लिए मेहनत करेगा, अपनी अपना सारी तवज्जोहात उस तरफ फोकस करेगा और खूब यानी कोशिश करेगा उस चीज को हासिल करने के लिए, तो अल्लाह ताला वो चीज उसको दे देते हैं, ठीक है। तो जब वो चीज उसको मिल जाती है ना जिसकी उसको रगबत थी, दिल में उसके तलब थी उस चीज के लिए, अब जब वो चीज उसको मिल जाती है ना तो अब क्या उसको हासिल हो जाता है, कुर्ब हासिल हो जाता है, उस चीज का कुर्ब हासिल हो जाता है। तो जब किसी चीज जिससे आपको रगबत हो उसका कुर्ब हासिल हो जाता है ना, वो पास आ जाती है ना, तो फिर मोहब्बत पैदा हो जाती है उसकी। पहले मोहब्बत नहीं थी, पहले रगबत थी, रगबत बढ़ी, तलब बन गई, और जब वो हासिल हो गई तो अब मोहब्बत बन गई, ठीक है। तो मोहब्बत जो है ना वो एक तीसरे दर्जे का जज्बा है, और यही मोहब्बत जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो यही इबादत बन जाती है कि अब जो है ना वो उसके अलावा और किसी की बात नहीं मानता, है ना। इसकी बात को दूसरों की बातों के ऊपर तरजीह देना शुरू कर देता है, इसको इबादत कहते हैं। ठीक है, तो जब ये नेगेटिव तरतीब किसी इंसान के अंदर आ जाती है कि उसकी रगबत जो है वो अल्लाह के अलावा मखलूक की तरफ चली जाए, उसकी तलब जो है वो अल्लाह के अलावा किसी मखलूक की तरफ चली जाए, ठीक है ना, तो अब ये बंदा जो है ना दिल में तो उसकी कैफियत ऐसी आ गई है कि अपने से कमतर चीज़ों की रगबत उसके अंदर पैदा हो गई, तलब पैदा हो गई, ठीक है ना, दिल में तो ये कैफियत उसकी आ चुकी हैं। अब उसका जो है ना वो इस तरफ जो है वो तवज्जो रहती है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि ऐसा शख्स जो है ना वो कभी कोई अच्छी बात सुनता है, कुरान मजीद सुनता है, नबी अलैहिस्सलाम सलाम की कोई बात सुनता है, या किसी अल्लाह वाले की तरफ से जो है वो इसको तवज्जो दिलाई जा रही होती है कि भाई ये बात जो तुम कर रहे हो ना ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो अल्लाह ताला ने अपने लिए पैदा किया था, तुम जो है वो अपनी जिंदगी को मखलूक की तरफ क्यों करके बैठे हुए हो ना, तुम अपनी जिंदगी क्यों जाया कर रहे हो। तो अगर ये शख्स वो वाली बात मान ले जो कि कुरान से उसको बताई जा रही है या कोई अल्लाह वाला उसको बता रहा है, अगर ये उस बात को मान ले, ठीक है, तो इसका जहन जो है ना वो अब कन्विंस हो गया कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजारनी चाहिए थी कि मेरे दिल के अंदर इन चीज़ों की, घटिया चीज़ों की रग़बत है, घटिया चीज़ों की तलब है, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो जहनी तौर पर वो इस बात पे कन्विंस हो गया, तैयार हो गया कि हाँ गलत कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको जो है ना वो तौबा कहते हैं, ठीक है, कि इसने जो है इसको नदामत हासिल हो गई कि मैंने गलत किया जो भी अब तक किया, ठीक है ना, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको नदामत हासिल हो गई। और नदम तौबतन, नदामत, नदामत जो होती है वो तौबा होती है, ठीक है, जहनी तौर पर तो इसने तौबा कर ली, लेकिन अब ये अपने दिल को इस रगबत से, इस तलब से, इस मोहब्बत से जो कि घटिया चीजों की इसके दिल के अंदर घर कर चुकी है, अब इससे कैसे निकाले अपने आप को, है ना, सिर्फ तौबा कर लेने से ये दिल की कैफियत कंप्लीटली चेंज नहीं हो जाती, ठीक है ना, एक इब्तिदा होती है लेकिन तब्दील नहीं हो जाती है कैफियत, इनके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो जो सवाल करने वाली हैं उनका सवाल यही है कि मैं जो मेरे अंदर जो ये घटिया चीजों की तलब पैदा हो चुकी है, इस तलब को मैं कम कैसे करूं, ठीक है, कि ये कम होते होते सिर्फ रगबत के दर्जे पर रह जाए, और रगबत के दर्जे से कम होते होते जो है ना ये जरूरत के दर्जे में आ जाए, ठीक है, कि जो घटिया चीजें हैं ना, ये घटिया चीजें अल्लाह ताला ने जो पैदा करी हैं, जानवर पैदा किए हैं, सब्जी और फल, खाने पीने की चीजें, राइट, और ये जो सोना चांदी है, और ये जो गैजेट्स हैं, है ना, घर के अंदर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत सारी ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारी ज़रूरत के लिए पैदा करी है ना, हमारा काम है हम इनसे अपनी ज़रूरियात को पूरा करें, ना कि हम इनकी तरफ माइल होना शुरू हो जाएं, दिल से माइल होना शुरू हो जाए, नहीं, ये तो ज़रूरत के लिए पैदा की गई हैं, जो इनमें से जायज़ चीज़ें हैं, हलाल चीज़ें हैं, वो ज़रूरत के लिए पैदा की गई हैं ना, ठीक है, तो इनको हमें ज़रूरत के दर्जे में रखना था, हमने उनको बढ़ा करके रगबत के दर्जे में पहुंचा दिया, और हमने उनको मजीद बढ़ा करके तलब के दर्जे में पहुंचा दिया, अब हम जो है ना वो वापस उनको ज़रूरत के दर्जे में कैसे लेकर के आए, ये है सवाल, ठीक है। तो अब इतना टाइम तो हमें सवाल समझाने में लगा है, पता नहीं आपको अभी भी समझ में आया कि नहीं, ठीक है, तो अब जो है वो उसका जवाब, अगर सवाल समझ में आ गया या अगर सवाल ही किसी को समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकती हैं, ठीक है, तो सवाल ये है, ठीक है, कि ज़रूरत के दर्जे में वापस कैसे लाया जाए इन चीज़ों को, ये चीज़ें बढ़ चुकी हैं मेरे दिल में ज़रूरत के दर्जे से बढ़ के रगबत के दर्जे में आ चुकी हैं, रगबत के दर्जे से बढ़ के तलब के दर्जे में आ चुकी हैं, ठीक है, इसको वापस कैसे लाया जाए, इसको वापस लाने का तरीका जिसने एक्चुअली सबके साथ शेयर किया था लिखी हुई फॉर्म के अंदर रमज़ानुल मुबारक के दौरान, कि ये जो कैफियात पैदा होती हैं ना, ये पैदा होती हैं जिक्र से पैदा होती हैं, ठीक है ना, जब किसी चीज़ का आपके सामने जिक्र किया जाता है ना, अच्छे अंदाज में पॉजिटिव तरीके से जिस किसी चीज का जिक्र किया जाता है ना, तो उससे जो है वो दिल के अंदर उसकी रग़बत पैदा होती है, दिल उस तरफ माइल होता है, ठीक है ना। मजम्मती तरीके से अगर किसी का जिक्र आपके सामने किया जाए, ठीक है ना, तो फिर उससे रग़बत पैदा नहीं होती, ठीक है ना। जैसे जहन्नुम का जिक्र आपके सामने किया जा रहा है, ठीक है ना, तो अब जहन्नुम को मुजयन बना करके तो नहीं आपके सामने पेश किया जा रहा है ना, बल्कि जहन्नुम के अंदर के क्या फरमा रहे हैं कि इन्हा तरमी बिशरन कलकसर कअन्नहु जिमालतुन सुफर, राइट। ये जहन्नुम का ऐसे कि भाई उसके अंदर जो है जो आग होगी ना, तो उसके शोले जो है वो महलों जितने बड़े होंगे, जैसे कि जर्द ऊंट होते हैं। अब ये जहन्नुम का तस्करा आपके सामने किया जा रहा है, क्या आपके दिल के अंदर इसकी रग़बत पैदा हो रही है जहन्नुम की? हाँ भी, मैं भी जरा चलूँ जहन्नुम में, है ना, चलो ऐसी जगह पे जहाँ पे इतने बड़े बड़े शोले होंगे ना, चलो हम भी चलते हैं जहन्नुम में, चलो हम भी जो है ना वो जहन्नुम को पाने की जस्तजू करते हैं, क्या ये आपके दिल में एक कैफियत पैदा हुई? नहीं, क्योंकि जहन्नुम की मजम्मत हो रही है, अगरचे कि उसका तस्करा हो रहा है लेकिन मजम्मती एतबार से, मजम्मती तरीके से, ठीक है ना। जबकि नीचे जन्नत का तस्करा हो रहा है, ठीक है ना, और जन्नत का तस्करा जो है वो यानी बहुत महमूद तरीके से हो रहा है कि वफ जलाल वयून व फवाकिहा मिम्मा यश्तहून कुलू वश्रबू हनी अम बिमा कुंतुम तामलून, है ना। ये जो तस्करा जन्नत का है, तो इससे फिर आपके दिल में उम्मीद है कि हम सबके दिल में शौक पैदा हो रहा है जन्नत का, है ना, कि इस घर इस दुनिया के अंदर जो है ना वो खाना भी जो है वो अच्छे से नहीं मिलता, मिलता भी है तो बहुत ही यानी खराब किस्म का खाना होता है, जो कि हेल्थ के लिए जो है ना इंतहाई मुजर होता है। पीने के लिए पानी मिलता है तो पानी भी जो है ना वो भी वो फिल्टर कर करा के पता नहीं किस तरह से मुसीबत से जो है वो कोई अच्छा पानी पीने को मिलता है, वरना तो पानी भी नहीं मिलता अच्छा पीने को इस दुनिया के अंदर, है ना। और मजे से रहना, मजे से रहना तो बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे हमने तो दुनिया में कभी मजा देखा ही नहीं, कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, ठीक है ना, कभी लाइट नहीं आ रही, कभी पंखा नहीं चल रहा, कभी जो है वो गैस नहीं आ रही, कभी जो है वो दूसरा कोई मसला है, और हर वक्त जो है ना वो चोरों डाकुओं का खौफ, कम से कम कराची पाकिस्तान में रहने वाले तो यही कहेंगे, हर वक्त चोरों का खौफ, कहीं कोई मार देगा, कहीं कोई मोबाइल छीन लेगा, कहीं कोई कुछ, है ना, ये कोई जिंदगी है भाई? है हनी हाँ, बस अपने आप को टीवी देख देख करके या क्रिकेट देख देख करके ना अपने आप को बहलाते रहते हैं कि हाँ बड़ी अच्छी जिंदगी है, बड़ी अच्छी जिंदगी है ना, वरना हकीकत पे तो जिंदगी इंतहाई बुरी हुई हुई है, ठीक है ना। तो हाँ, जन्नत के अंदर जिंदगी होगी, कुरान मजीद कह रहा है कि जन्नत के अंदर मजों वाली जिंदगी होगी, राइट। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कि बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, सादिक भी हैं, अमीन भी हैं, तो जन्नत का शौक, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये जो जो गंदी चीजें हैं ना, तो आपका जो सवाल है उसके ऊपर वापस आते हुए कि मैं अपनी तलब को रग़बत के दर्जे में और रग़बत से ज़रूरत के दर्जे में कैसे ला सकती हूँ, कि भाई जिन चीज़ों से आपके दिल में इन चीज़ों की रग़बत पैदा हुई है, तलब पैदा हुई है, ठीक है ना, उन चीज़ों को जो है ना वो अब आप छोड़ दें, ठीक है, उन चीज़ों से अपने आप को दूर करें, अपने आप को दूर करें उन वेन्यू से, उन मकामात से, कि जहां पर इन घटिया चीजों के बारे में इतनी तारीफें हुआ करती थी, घटिया चीजों के बारे में तारीफें हुआ करती थी, आप जो है वो इन तारीफों को सुनती रहती थी, देखती रहती थी, आपके दिल में इनकी रग़बत पैदा हो गई, और बढ़ती बढ़ती जो है ना वो तलब पैदा हो, तलब में बन गई, तलब की शक्ल अख्तियार कर गई, ठीक है ना। तो उन वेन्यू से जहां पे इन घटिया चीजों की तारीफें हुआ करती हैं, वहां से अपने आप को हटाएं, ठीक है। और सिर्फ हटाना भी काफी नहीं है, क्योंकि इतना आसानी से आपके दिमाग से वो चीजें निकलेंगी नहीं, बल्कि दूसरी तरफ लेकर के जाएं जहां पर के उन बातों की तारीफें होती हैं और उन बातों की जो है ना वो अच्छी अच्छी तफसीलात बताई जाती हैं, अच्छा अच्छा तस्करा किया जाता है, कि जहाँ जो चीजें जो हैं वो अल्लाह ताला तक पहुंचाने वाली हैं, अल्लाह ताला से जोड़ने वाली हैं, ठीक है, उनकी तारीफों में अपने आप को घेरे, अपने आप को सराउंड करें उन मजालिस के अंदर, उन मौके के अंदर, उन वेन्यूज के अंदर, कि जहां पर के अल्लाह और अल्लाह के मुतअल्लिक जो चीजें हैं उनकी तारीफें हुआ करती हैं, उनका तस्करा हुआ करता है अच्छे अंदाज में, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो गंदी चीजों की तलब थी वो कम होना शुरू हो जाएगी और जो अच्छी चीजों की तरफ थी ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से जो है वो आपका दिल जो है वो यानी अच्छी चीजों की तरफ मायल हो जाएगा, उनकी तलब उसके अंदर पैदा हो जाएगी। और ये जो जरूरत वाली चीजें थी जिनकी के तलब की कोई जरूरत नहीं, जिनकी के रغبत की कोई जरूरत नहीं, बल्कि जरूरत की हद तक उसको रखना है, तो वो जरूरत की हद तक आकर के सेटल हो जाएंगे आपकी जिंदगी के अंदर। और जरूरियात जो है वो अल्लाह ताला पूरी करने वाले हैं, अल्लाह ताला ने जरूरियात पूरी करने का की जिम्मेदारी दी हुई है, वो जरूरियात पूरी हो जाएंगी, उसके लिए तलब और रغبत की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना, जरूरियात अल्लाह ताला अपने गैबी खजानों से पूरे करते हैं, किसी न किसी सबक को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला जरूरियात पूरी कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया जवाब, अब इसके ऊपर आप गौर करती रहेगा रिकॉर्डिंग बेशक सुन करके, अल्लाह ताला ने उसका इंतजाम किया हुआ है। और अगर कोई सवाल फिर भी समझ में ना आए कोई बात, तो वो आप अगली क्लास में या जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर पूछ लीजिएगा। यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं, वो आपको दावाना अनिल हमदुल्ला।